नमस्कार भारत, आज है 13 जून दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका में फ्लोरिडा के एक नाइट क्लब में हुए नरसंहार में 50 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ओबामा ने इसे नफरत की कार्रवाई बताया।
This massacre is therefore a further reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon.
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, कांग्रेस ने भी संगठन में फेरबदल कर चुनावी समर में ठोकी ताल।
केरल में सिर्फ एक, पांडिचेरी में शून्य, बंगाल में कुल 3 सीटें, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गुंजाइश नहीं मुझे पहुंच सकती।
बिहार में टॉपर घोटाले पर थम नहीं रही सियासत, अब आरजेडी ने तस्वीर के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, होगी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्लोरिडा में समलैंगिकों के एक क्लब पर हमले को आतंकवाद और नफरत की कार्रवाई बताया है। ऑरलैंडो के एक क्लब में गोलीबारी में 50 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। एफबीआई ने हमलावर की पहचान अमरीकी नागरिक उमर मतीन के तौर पर की है। एफबीआई के मुताबिक उसने हमले से पहले अमरीकी इमरजेंसी सर्विस पर फोन कर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से समर्थन जताया था। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि ये हत्याएं आतंकवादी हमला है।
We are still learning all the facts. This is an open investigation. We've reached no definitive judgment on the precise.
हम अभी जानकारी जुटा रहे हैं, अभी जांच शुरू की गई है और हमलावर के इरादों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एफबीआई इसे आतंकवादी घटना के तौर पर देख रही है और मैंने कहा है कि हत्यारे को कहां से इसकी प्रेरणा मिली और चरमपंथी संगठनों से उसके संबंध की जांच की जानी चाहिए। ये शख्स नफरत से भरा हुआ था। आने वाले दिनों में इस मामले में हमें और जानकारी मिलेगी। ये थे बराक ओबामा के शब्द। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये अमेरिका पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमला है। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की इस हमले को इस्लामिक कट्टरपंथ से नहीं जोड़ने के लिए निंदा की है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने इस हमले की निंदा की है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला और इटली के प्रधानमंत्री मैथ्यो रेंजी ने भी हमले की आलोचना की है। इस बीच लॉस एंजलिस में एक हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने कहा है कि वो समलैंगिकों के एक मार्च पर हमले की योजना बना रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक उसने एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बताया कि वह मार्च को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कैलिफोर्निया की पुलिस ने सेंटा मोनिका बीच पर इस शख्स को गिरफ्तार किया है। इसका नाम जेम्स होवेल बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि इसके पास से 3 असॉल्ट राइफलें, कई रसायन और गैस मास्क मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसके तार ऑरलैंडो में हुए हमले से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत के बीचों बीच एक शक्तिशाली बम धमाका हुआ है। लेबनान के आंतरिक मंत्री नोहाद मचनूक ने कहा है कि देश के सबसे बड़े बैंक के मुख्यालय को निशाना बनाकर यह धमाका किया गया है। जहां धमाका हुआ वहां इमारत को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रमजान में इफ्तार का वक्त होने की वजह से लोग अंदर थे और सड़कें खाली थी और इस वजह से किसी की जान नहीं गई है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड गजनम ने उन शहरों से शराब पर रोक लगाने को कहा है जहां यूरो 2016 फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले खेले जाने हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने समाचारों में सुना, अमेरिका में फ्लोरिडा प्रांत के ऑरलैंडो शहर में एक नाइटक्लब में हुई गोलीबारी में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे चरमपंथी और नफरत भरी कार्रवाई बताया है। हमले के पीछे बंदूकधारी उमर मतीन के मंसूबों की जाँच की जा रही है। एफबीआई ने कहा है कि हमले से पहले उमर मतीन ने इमरजेंसी सेवा को कॉल कर कथित इस्लामिक स्टेट के प्रति वफादारी की बात कही थी। पूरा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
at that. They're shooting back and forth. That is crazy.
ये आवाजें अमेरिका के ऑरलैंडो शहर में पुरुष समलैंगिकों के एक क्लब पल्स में हुई गोलीबारी की हैं। इस गोलीबारी में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस हमले को देश के इतिहास में गोलीबारी की सबसे भयंकर घटना करार दिया है। बराक ओबामा ने कहा,
Today marks the most deadly shooting in American history.
बराक ओबामा कह रहे थे, आज अमेरिका के इतिहास में सबसे भयंकर गोलीबारी हुई है। हमलावर के पास एक बंदूक और एक असॉल्ट राइफल थी। ये संहार हमें याद दिलाता है कि अमेरिका में किसी के लिए भी हथियार हासिल करना कितना आसान है, जिससे वो स्कूलों, प्रार्थना स्थलों या सिनेमा घरों या फिर किसी एक नाइट क्लब में लोगों पर गोलियां चलाते हैं। हमें तय करना है कि क्या हमें ऐसा देश चाहिए। ये थे बराक ओबामा के शब्द। ये हमला देर रात तब हुआ जब क्लब में कई समलैंगिक जोड़े मौजूद थे। हमले के एक चश्मदीद युआन रिवेरा ने बताया कि ये एक भयावह मंजर था।
At 2 a.m. once after hours once the club started up was about to close in the outside we started hearing noises real banging noises and it was the shooting between the cop and the shooter.
रात करीब 2 बजे जब क्लब बंद होने वाला था तब हमने कुछ आवाजें सुनी। ये हमलावर और पुलिस के बीच गोलीबारी की आवाजें थीं। जब बंदूकधारी क्लब में आया तो राइफल से उसने चारों ओर गोलियां चलाईं। अंधेरा छा गया। हमने अपने कपड़ों पर खून देखा। लोग जमीन पर गिर रहे थे। हमलावर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर रहा था। उसने कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था। क्लब के बाउंसर ने शीशा तोड़ दिया जिससे कि कुछ लोग वहां से निकल पाए। ये एक खूनी खेल था। युआन रिवेरा के शब्द। FBI ने हमलावर की पहचान एक अमरीकी नागरिक उमर मतीन के तौर पर की है। FBI के विशेष एजेंट रॉन हॉपर ने कहा,
FBI first became aware of Martin in 2013.
FBI को 2013 में मतीन के बारे में पहली बार पता चला जब उसने अपने साथी कर्मियों से आतंकवादियों से अपने संबंध के बारे में कुछ भड़काऊ बातें की थी। FBI ने बहुत बारीकी से छानबीन की थी। गवाहों से भी बात की गई और उसके रिकॉर्ड भी खंगाले गए। मतीन से 2 बार पूछताछ की गई थी। कुछ हासिल नहीं हुआ तो जांच को बंद कर दिया गया। 2014 में मतीन फिर एक अमरीकी आत्मघाती हमलावर मुना अबू सलाह से संबंध के मामले में FBI की नजर में आया था। मतीन के पिता मीर सादिक ने NBC न्यूज को बताया कि इस घटना का धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मियामी में एक समलैंगिक जोड़े को चुंबन लेता देख हमलावर गुस्से में आ गया हो। कथित तौर पर समलैंगिकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले पर सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर लव इज लव हैशटैग ट्रेंड करता रहा, जिसमें लोग समलैंगिकों पर किए गए हमले की निंदा करते रहे। ऑरलैंडो में माहौल काफी भावुक हो गया जब सिटी कमिश्नर पैटी शिहन ने ये कहा,
We as a gay community, gay, lesbian, bisexual, transgender community are people who love.
समलैंगिक समुदाय के लोग प्यार करते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि हिंसा से हमारे दिलों पर हमला करेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे साथ लोग खड़े हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर उमर मतीन की नाइट क्लब के अंदर ही मौत हो गई है। FBI ने पुष्टि की है कि उमर मतीन ने हमले से पहले इमरजेंसी नंबर 919 पर कॉल करके चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के बारे में बात की थी।
ब्यौरा सुना रही थी हरिता कांडपाल। और अब सीधे चलते हैं BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास वॉशिंगटन। ब्रजेश, ऑरलैंडो हमले में जाँच कहाँ तक पहुँची है? हमलावर उमर मतीन के बारे में और क्या ताज़ा जानकारी सामने आई है?
देखिए, FBI के अनुसार, जैसा कि अभी अभी हरिता की रिपोर्ट में भी आपने सुना, उमर मतीन ने हमले के दौरान ही यहाँ की जो इमरजेंसी पुलिस सेवा है 911 उसे फोन किया और इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा को शपथ है वो लेने की बात कही। FBI का कहना था कि 2013 में उन्होंने अपने ऑफिस के सहयोगियों से बात करते हुए कुछ भड़काऊ बातें कही थी जो आतंकवाद के साथ उनके जुड़े होने की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन FBI अपनी पूछताछ में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 2014 में भी फ्लोरिडा में जन्मे मोनेर मोहम्मद अबू सालहा, जो सीरिया में एक चरमपंथी गुट से जा मिले थे और वहां एक आत्मघाती बम धमाका भी किया था उन्होंने, उनके साथ जुड़े होने के आरोप में उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला तो जांच बंद कर दी गई। और FBI के अनुसार उन पर अभी निगरानी भी नहीं रखी जा रही थी। और अधिकारियों का ये भी कहना है कि फिलहाल ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इस्लामिक स्टेट जो संगठन है उसके निर्देश पर उन्होंने ये हमला किया हो। यही लग रहा है कि उन्होंने अपने ही खुद ही इस हमले को अंजाम दिया। वो उस संगठन से प्रभावित जरूर थे, लेकिन शक के घेरे में आने के बावजूद उमर मतीन ने अधिकारियों के अनुसार कानूनी तौर से पिछले हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर दो बंदूकें खरीदी थी और वो अफगान मूल के थे, न्यूयॉर्क में पैदा हुए और दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनियों में से एक G4S सिक्योर सॉल्यूशंस के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और अमेरिका की जो कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा इस कंपनी के जिम्मे है। और अमेरिकी मीडिया के अनुसार उनके पिता कैलिफोर्निया स्थित एक अफगान टीवी चैनल पर शो भी करते हैं। अफगान तालिबान जो मुख्यतः पश्तून है उनका समर्थन करते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की मंशा जताई है।
ब्रजेश, 9/11 के बाद अमेरिका में इसे सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, देश भर में इस पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
देखिए, इस वक्त तीन चीजों पर बहस चल रही है। एक तो है कि खासा गुस्सा है, लेकिन जो बहस तीन बातों पर हो रही है कि फोर्ट हुड में अमेरिकी फौजी निदाल हसन हो, सैन बर्नार्डिनो में हमला करने वाला जो पाकिस्तानी जोड़ा था वो हो, या फिर उमर मतीन हो, ये सब अच्छी नौकरियों में थे, अच्छे परिवार से थे, अमेरिका में तरक्की के रास्ते पर थे, तो क्या है जो ऐसे लोगों को चरमपंथ के रास्ते पर ले जा रहा है? और अब कितना मुश्किल है ऐसे लोगों को रोक पाना जो सिर्फ एक सोच से प्रभावित होकर ये हमले करते हैं। आखिर FBI ने दो बार उमर मतीन को इंटरव्यू किया था लेकिन वो इस हमले को रोक नहीं पाए। दूसरी बात जो बहस हो रही है वो बंदूकों को लेकर कि जिस आसानी से बंदूक खरीदे जा सकते हैं यहाँ, उस पर बात हो रही है कि शायद ये अकेले दम पर हमला करने वालों को रोकना मुश्किल हो, उनसे पूछताछ में कुछ ना मिल पाए, लेकिन उनके हाथों में ऐसे खतरनाक हथियारों को पहुंचने से रोका जा सकता है अगर बंदूकों को लेकर के एक कड़े नियम हो। न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने अपनी जो फ्रंट पेज है उसमें उन्होंने उसकी हेडलाइन है NRA सिख जिहाद, यानी कि जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है उस पर उन्होंने काफी हमला किया है। और तीसरे जो समलैंगिक समुदाय है उनको लेकर जो नफरत है एक बड़े तबके में, जो ये मानता है कि ये धर्म के खिलाफ है और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, और यही वजह थी कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपने भाषण में समलैंगिक समुदाय के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।
जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका में इससे पहले भी ऐसे कई हमले हुए हैं जिनमें अंधाधुंध गोलीबारी कर बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
खबर सच है अगर BBC पर है।
भारतीय जनता पार्टी की इलाहाबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज दो राजनीतिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसके बाद कार्यकारिणी के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बैठक खत्म होने पर इलाहाबाद में नरेंद्र मोदी की एक रैली भी होनी है। बैठक के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को सामने रखा, साथ ही दावा किया कि उत्तर प्रदेश में BJP अपने दम पर सरकार बनाएगी। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
हर कार्यकारिणी में राम मंदिर का विषय उठे उचित नहीं।
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संगम के किनारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा हाशिए पर ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल शाम इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। वो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की इलाहाबाद में एक रैली भी होगी। इसे BJP की चुनावी मुहिम का हिस्सा बताया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भाषण के साथ हुई। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज के बखान के साथ साथ ये भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर BJP का दायरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाह के भाषण की जानकारी देते हुए कहा,
अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि आज की स्थिति ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी, हर जगह भाजपा है बहुत प्रभावी तरीके से।
अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्षी दल कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक शाह ने कहा,
जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग थे वो कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं और ये सिलसिला काफी तेज हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 2 साल में विकास के मार्ग में जो कांग्रेस ने बाधा देने का काम किया है उसके कारण कांग्रेस का महत्व कम हो रहा है। अध्यक्ष ने एक बात और स्पष्ट की कि भाजपा का उदय कांग्रेस के छीन होने के कारण नहीं है।
बीजेपी अध्यक्ष ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाया और दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
उत्तर प्रदेश की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो बहुत चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश में विकास का अभाव है, शांति समाप्त है, हिंसा का माहौल है। हम पूरी तैयारी से लगेंगे और अपने पूर्ण बहुमत की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, ये संकल्प उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में दोहराया।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले इस बात को लेकर जमकर अनुमान लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर बीजेपी किस चेहरे को सामने रखेगी, लेकिन पार्टी ने इस सवाल को भविष्य के लिए टाल दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मुद्दा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बल्कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा।
ये थे वात्सल्य राय। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर बीजेपी ही नहीं कांग्रेस की भी नजर है। पार्टी ने यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में फेरबदल किया है और राज्यसभा में पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस बारे में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से बात की और पूछा कि गुलाम नबी आजाद की यूपी की सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस की नाव को कहां तक पार लगा पाएंगे।
गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मैंने काम किया है, आज वो देश के सीनियर मोस्ट एमपी हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर करण सिंह के अलावा कोई उनसे सीनियर नहीं है इस समय हमारे पास। वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं पहले भी, कल परसों भी वो आए थे यहाँ राज्यसभा चुनाव में, और ये उन्हीं का कुशल नेतृत्व था कि कम संख्या के बावजूद भी हम राज्यसभा भी जीत गए, विधान परिषद भी जीत गए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस ने पॉजिटिव परिवर्तन किया। जहाँ तक भाजपा की बात है, वो कार्यकारिणी कर रहे हैं इलाहाबाद में और उनके दिमाग में चुनाव है, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या एक आ रही है, भाजपा जहाँ भी जाती जनता के बीच में ये अपनी उपलब्धियों की बात जब करते हैं तो इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो 2014 में अपने चुनाव में वायदे किए थे आज 2016 में आपने क्या पूरा किया। और वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी लायबिलिटी है, सबसे बड़ी समस्या है।
प्रधानमंत्री की मीटिंग हो या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की मीटिंग हो, दोनों जगह वो ये याद दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीती, वही प्रदर्शन अपना दोहराना चाहते हैं। तो आपको क्या वजह लगती है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में विधानसभा में ऐसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सकती?
मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, इनके करीब 10 एमएलए जो थे वो एमपी बन गए, जिसमें कलराज मिश्रा जी केंद्रीय मंत्री हैं, उमा भारती जी भी हैं और तीसरी मंत्री निरंजन ज्योति जी भी हैं, तीन तो उसमें मंत्री। इनके द्वारा रिक्त स्थानों पर जब चुनाव हुआ तो एक को छोड़कर सारी 12-13 सीटों पर चुनाव हार गए। तो एक झोंका था, एक हवा थी 2016 में, तो उसके बाद इनके इतनी जो कसौटी में जनता ने कसा तो इतना असफल हुए कि उसके बाद से जितने उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं जीत नहीं पा रहे हैं। और भारत वर्ष में पूरे अब भारतीय जनता पार्टी के गिरावट का दौर शुरू हो गया। देखें, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, आसाम में ये जीते पर वहां भी इनका मतों का प्रतिशत बहुत कम हुआ। लेकिन क्या हुआ, तमिलनाडु में 0, केरल में सिर्फ 1, पांडिचेरी में 0, बंगाल में कुल 3 सीटें। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गुंजाइश इनके पक्ष में नहीं।
एक बार दोबारा लौट के आ रहा हूँ गुलाम नबी आजाद साहब, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश की चुनौती कहीं बड़ी होगी, 1989 के बाद से आप सत्ता में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस कोशिश कर रही है उससे उसे कामयाबी मिलेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में?
बता दूं, पिछला कार्यकाल मुझे गुलाम नबी आजाद साहब का याद है, जो कुछ उनके विचार थे अगर उसे इम्प्लीमेंट किया गया होता तो आज कांग्रेस बहुत बेहतर पोजीशन में होती। अब फिर वो दोबारा लौट के आए हैं, उनके जो सुझाव हैं अगर माने जाएंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अगली सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी।
ये थे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। बिहार के टॉपर घोटाले को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को विपक्षी दल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे बच्चा राय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच निजी और पेशेवर रिश्ते हैं। अब तक विपक्ष घोटाले के साजिशकर्ताओं को सत्ताधारी दलों से संरक्षण मिलने के आरोप लगाता रहा है। सुनिए पटना से मनीष सांडिल की रिपोर्ट।
बैंक पे नहीं हम सरेंडर करने के लिए आए तो क्यों घबरा रहे
हैं? क्या 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 आप देखो इन सब घोटाला कर रहे
हैं। हम पर जितने भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद और तकदीन है। अच्छा ये बताओ
बिहार के टॉपर घोटाले को लेकर सूबे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले के दो अभियुक्त हैं वैशाली जिले के विशन राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह। शनिवार तक विपक्ष यह आरोप लगाता रहा था कि बच्चा राय को राजद तो लालकेश्वर को जदयू का संरक्षण मिल रहा है, लेकिन रविवार दोपहर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर बच्चा राय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच निजी और व्यावसायिक रिश्ते होने के आरोप लगाए। उन्होंने ट्विटर पर तस्वीरें भी जारी की जिसमें गिरिराज सिंह और बच्चा राय एक साथ नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने इन आरोपों पर सफाई दी है।
किसी के साथ तस्वीर खींचा जाना किसी कार्यक्रम में किसी के यहाँ निजी पार्टी में और किसी राजनीतिक दल के मंच पर सुप्रीमो के बगल में बैठना दोनों अलग अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल अपने पर जो आरोप लगा है जो आरोप सत्यापित हुआ है उसको झुठलाने के लिए अंधेरे में तीर चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का उनसे कोई रिश्ता नहीं है।
दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद से ही स्थानीय मीडिया में एक तस्वीर और वीडियो फुटेज चर्चा में है। इसमें पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बच्चा राय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मंच पर दिखाई देते हैं। भाजपा सहित तमाम विपक्षी दल इस तस्वीर और वीडियो फुटेज के सहारे यह आरोप लगाते रहे हैं कि इस घोटाले के साजिशकर्ताओं को सत्तासीन दलों का संरक्षण हासिल है, लेकिन रविवार के तेजस्वी यादव के ट्वीट ने राजद का मनोबल बढ़ा दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं,
आज जिस तरह से गिरिराज सिंह जी का बच्चा राय के साथ फोटो आया है इसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता इस घोटाले में है और बच्चा राय ने भी बयान दिया है कि केंद्रीय मंत्री के सहयोग से हम मेडिकल कॉलेज खोलने वाले थे।
जहां तक इस मामले की जांच का सवाल है तो लालकेश्वर प्रसाद सिंह अभी तक फरार हैं। वहीं इस मामले की जांच कर रही पटना पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में कल दो और गिरफ्तारियां की। मनीष शांडिल्य बीबीसी पटना।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं। जी
जी अमरीश, आज जैसा कि हम अमरीका में ऑरलैंडो हमले की बात कर रहे हैं उसी तरह सारे अखबारों में ये खबर छाई है। इसके अलावा भाजपा कार्यकारिणी की जो हमने बात की वो भी खबरें सब छाई हैं। लेकिन और खबरों जिनका मैं जिक्र करूं तो उसमें कैराना की एक खबर है जो मुझे अखबारों में प्रमुखता से नज़र आ रही है। द हिंदू अखबार अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा है कि मथुरा और कैराना का मुद्दा लेकर भाजपा जो है वो यूपी विधानसभा चुनाव में कूदने जा रही है, इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। और इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है कैराना मथुरा मुद्दे से मिशन यूपी का आगाज़ करेगी भाजपा। और इंडियन एक्सप्रेस ने कैराना मामले में एक खबर छापी है कि यहाँ से पलायन करने के बारे में सांसद ने जो सूची दी थी उसमें वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है और जो बहुत पहले ही ये जगह छोड़ के जा चुके हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने 346 हिंदू परिवारों की सूची जारी की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ये लोग एक विशेष समुदाय के लोगों की धमकियों और जबरन वसूली से परेशान होकर अपने घर छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता में समर्थन हासिल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। चीन इसमें रोड़े अटका रहा है ये बता दें।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत बैडमिंटन से।
2016 Chaminade Australian Badminton Open Women Singles Champion Saina Nehwal.
The champion once more, Saina Nehwal, 2 years after she first lifted the trophy here at the Australian Open.
आखिरकार भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने इस साल अपने खिताबी सूखे को समाप्त किया और कल ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाइनल में उनका सामना चीन के सुन यू से था। सातवीं वरीयता हासिल साइना नेहवाल को गैर वरीयता हासिल सुन यू को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। 1 घंटे 1 मिनट के संघर्ष के बाद आखिरकार साइना ने सुन यू को 11-21, 21-14, 21-19 से हराया। पहला गेम तो सुन यू ने बेहद आसानी से अपने नाम किया, लेकिन दूसरे गेम में 8-8 अंक तक पहुंचते पहुंचते दोनों खिलाड़ियों के बीच संघर्ष दिखना शुरू हो गया और उसके बाद साइना नेहवाल ने रफ्तार पकड़ ली। तीसरे गेम में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। सुन यू कई बार समझ नहीं सकी कि शटल कॉक कोर्ट के अंदर गिरेगी या बाहर, और उनके कुछ शॉट्स साइड लाइन के बाहर भी गए। दूसरी तरफ साइना नेहवाल ने जबरदस्त स्मैश तो लगाए ही, साथ ही रिटर्न भी बेहद शानदार किए। अंततः तीसरा गेम 21-19 से जीतने के साथ ही उनके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। मैच जीतने के बाद उन्होंने अपना रैकेट दर्शकों की तरफ उछाल दिया। साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम किया। उनकी जीत को बेहद महत्वपूर्ण माना भारत के पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना ने।
रियो ओलंपिक्स के लिए अब ये एक मेडल की पक्की दावेदार मानी जा सकती है। इन्होंने रचना के इंटरनॉन जो कि नंबर 2 की खिलाड़ी हैं, उनको पराजित किया। उसके बाद वैंग यहन के सामने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने और उनको तो बिल्कुल जैसे एक पल्वराइज कर दिया। और सन यून भी बहुत अच्छी फॉर्म में थी। सेमीफाइनल में चाइना की ली शूरी जो है, जो कि बड़ी मजी हुई खिलाड़ी है, उनको हरा के फाइनल में प्रवेश किया था। और साइना नेहवाल, उन्होंने ये खिताब जीता। बहुत देर से मैंने साइना नेहवाल को इस पेस के ऊपर, इस गति के ऊपर खेलते हुए नहीं देखा।
उधर पुरुष एकल वर्ग का फाइनल डेनमार्क के हांस क्रिस्टियन विटिंग्स ने जीता। उन्होंने कोरिया के जियोन योक जिन को 1 घंटे 10 मिनट के संघर्ष के बाद 21-16, 19-21, 21-11 से हराया। और अब बात हॉकी की। इन दिनों लंदन में आयोजित की जा रही दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कल विश्राम का दिन था, जबकि आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले भारत ने जर्मनी से 3-3 से बराबरी वाला मुकाबला खेला, तो अगले मैच में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से मात दी। आज ही ऑस्ट्रेलिया का सामना जर्मनी से और ग्रेट ब्रिटेन का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपना पहला मैच गोल रहित बराबरी पर खेला, लेकिन अगले मैच में उसने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। अंक तालिका में अब बेहतर गोल अंतर और 4 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले और भारत भी 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत और बेल्जियम के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णस्वामी कहते हैं,
मुझे लगता है कि बेल्जियम की टीम, जिसका मनोबल बहुत ऊंचा नहीं है, कोरिया के साथ हारने के बाद जर्मनी के साथ वो 4-2 से आगे थे और उसके बाद जर्मनी ने आखिरकार लास्ट के 10 मिनट में 2 गोल दागकर 4-4 का ड्रॉ हासिल किया। तो बेल्जियम का मनोबल इस समय इतना अच्छा नहीं है। यदि भारत की टीम शुरू में ही 1 या 2 गोल कर देती है तो एक और विजय की अपेक्षा की जा सकती है।
और अब बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में आज दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी मात दी थी। भारत के लोकेश राहुल ने अपने पहले ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में नाबाद 100 रन बनाकर पहले भारतीय बल्लेबाज होने का गौरव तो हासिल किया ही, साथ ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चिंता भी दूर कर दी। अब ये बात सही है कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी और एक गेंद पहले ही 168 रन पर ढेर हो गई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों से उनका श्रेय नहीं छीना जा सकता। खासकर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से 28 रन देकर 4 विकेट झटके, उनके अलावा धवल कुलकर्णी और बरिंदर सरन ने भी 2-2 विकेट लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जिम्बाब्वे की टीम थोड़ा बेहतर खेलेगी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्लोरिडा में समलैंगिकों के एक क्लब पर हमले को आतंकवाद और नफरत की कार्रवाई बताया है। ऑरलैंडो के एक क्लब में गोलीबारी में 50 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। FBI ने हमलावर की पहचान अमरीकी नागरिक उमर मतीन के तौर पर की है। इस बीच लॉस एंजलिस में एक हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने कहा है कि वो समलैंगिकों के एक परेड पर हमला करने की योजना बना रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को उसने बताया कि वो मार्च को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अधिकारियों ने बताया है कि उसके पास से 3 असॉल्ट राइफलें, कई रसायन और गैस मास्क मिले हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी ही देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com। नमस्कार।